आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मालदीव के आला रहनुमाओं से मुलाकात की और सलाहियत साजी और तरक्की में मदद का यकीन दिलाया। उन्होंने माले में मालदीव के यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। वजीर आजम ने तमिलनाडु के टूटीकोरिन में 4,800 रूपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। थाईलैंड कम्बोडिया सरहद पर झड़पें जारी हैं। दोनों ने एक दूसरे पर बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफवर्जी का इल्जाम लगाया है। शतरंज में जॉर्जिया के बटूमी में फिडे खवातीन आलमी कप 2025 में कुनेरो हम्पी और उनकी साथी हमवतन खिलाड़ी दिव्या देशमुख के दरमियान खिताबी मुकाबला जारी है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन इंग्लैंड भारत पर 311 रन की सबकत के साथ मजबूत पोजीशन में है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मालदीव की राजधानी माले में मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत की। मालदीव के सदर डॉ मोहम्मद मोइज़ो ने गर्मजोशी के साथ तकरीबात में जनाब मोदी का खैर मकदम किया। इस मौके पर जनाब मोदी ने यकीन दहानी कराई कि भारत मालदीव के अवाम की उमंगों की खातिर मदद करने और हमारे कुरे अर्ज की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के तई पुरअज़्म है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मालदीव के 60वें यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत एक एजाज था। जनाब मोदी ने मालदीव के अवाम और हुकूमत को दिली मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इस यादगार मौके पर मालदीव की मालामाल सकाफती विरासत और अवाम के जोश और जज्बे की अक्कासी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और मालदीव की मजबूत शराकतदारी है जो बाहमी एहतराम, मुश्तरका अकदार और सकाफती और इक्तिसादी तबादलों की एक तवील तारीख पर मबनी है। बाद में वजीर आजम मालदीव का अपना दो रोजा दौरा मुकम्मल करके वापस वतन के लिए रवाना हो गए। इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मालदीव के नायब सदर हुसैन मोहम्मद लतीफ के साथ एक मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने भारत मालदीव दोस्ती के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया, जिसमें बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी, आबोहवा की तब्दीली और तवानाई जैसे शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी इश्तराक से उनके अवाम को काफी फायदा हुआ है और दोनों ममालिक आइंदा बरसों में अपनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के मुंतजर हैं। एक अलहदा मीटिंग में वजीर आजम मोदी ने मालदीव की पार्लियामेंट अवामी मजलिस के स्पीकर अब्दुलरहीम अब्दुल्ला के साथ तबादला ख्याल किया। वजीर आजम मोदी ने मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की। उनके साथ बातचीत में भारत की पड़ोस मुकदम पॉलिसी और महासागर नजरिए से मुताबिकत रखते हुए मालदीव को एक अहम शराकतदार के तौर पर अहमियत देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यकीन दहानी कराई कि भारत सलाहियत साजी और तरक्याती इश्तराक के जरिए मालदीव की मदद करना जारी रखेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से वापसी के बाद आज टूटीकोरिन एयरपोर्ट की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह किया और 4,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखा। 17,340 स्क्वायर मीटर पर मुहित टर्मिनल पर सालाना 20 लाख मुसाफिरों का आना जाना होगा। सड़क बुनियादी ढांचे के शोबे में वजीर आजम ने NH36 के 50 किलोमीटर सत्यथुपे चोलापुरम के 4 लेन को कौम के नाम वक्फ किया, जिसमें 3 बाईपास कोलीडाम नदी तक 4 लेन वाला 1 किलोमीटर तवील पुल, 4 दूसरे बड़े पुल, 7 फ्लाईओवर और कई अंडरपास शामिल हैं जो डेल्टा खित्ते के सकाफती और जरई मराकज को जोड़ने में अहम रोल अदा करेगा। दूसरा प्रोजेक्ट 5.16 किलोमीटर तवील 6 लेन वाला NH138 टूटीकोरिन साहली रोड है, जो तकरीबन 200 करोड़ रूपये की लागत से तामीर किया गया है। उन्होंने चिदम्बरनार बंदरगाह पर तकरीबन 285 करोड़ रुपए के शुमाली कार्गो बर्थ 3 का भी इफ्तिताह किया। जनाब मोदी ने 90 किलोमीटर तवील मदुराई बुधी नायाकिनोर की बिजलीकारी का भी आगाज किया। इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में गैर मामूली तरक्की हो रही है, जो विकसित भारत के लिए रियासत के तई मरकज के अहद की अक्कासी करती है।
भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसी आत्मविश्वास से हम विकसित भारत बनाएंगे। विकसित तमिलनाडु बनाएंगे। आज तुतुकुड़ी में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में उनकी सरकार ने बुनियादी ढांचे और तवानाई के शोबों पर तवज्जो मरकूज की है, क्योंकि ये किसी भी रियासत की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी है।
4800 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इनमें एयरपोर्ट, हाईवे, पोर्ट और रेलवे के प्रोजेक्ट हैं और पावर सेक्टर से जुड़े अहम इनिशिएटिव भी है। तमिलनाडु की जनता को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 124वां एपिसोड होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। 17 मेंबराने पार्लियामेंट को उनकी गैर मामूली कारकर्दगी के लिए आज नई दिल्ली में 2025 के संसद रत्न अवार्ड से सरफराज किया गया। इनमें बीजेपी के रवि किशन और दिनेश शर्मा, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सोले और शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत शामिल हैं। एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से ये अवार्ड दिए गए हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि ये अवार्ड मेंबराने पार्लियामेंट की उम्दा कारकर्दगी को तस्लीम करने के लिए हैं। उन्होंने अवार्ड याफ्तगान तमाम मेंबराने पार्लियामेंट को मुबारकबाद भी दी।
सांसद रत्न अवार्ड ये एक तरीके से प्राइम हमारे एमपीज का परफॉर्मेंस है, उसको रिकॉग्निशन किया गया, उनका अच्छा काम का उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मैं सारा एमपीज को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि अवार्ड का वो सब हकदार है।
भारतीय जनता पार्टी ने बहादुर सिपाहियों की शुजात को याद करने के लिए आज नई दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स में कारगिल विजय दिवस समारोह का इनेकाद किया। मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ के साथ प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कयादत में भारत खुदकफील बन रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त भी था जब मुल्क के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज भारत न सिर्फ बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहा है बल्कि दुनिया को भी बरामद कर रहा है।
एक समय हमारे पास मिक्स के सिवाय कोई और एयरक्राफ्ट नहीं था, आज रफेल है, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, 28 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, उसी तरीके से चिनूक चॉपर्स हैं, एयर स्पेस की मिसाइल्स हैं, तो आज हम आत्मनिर्भर होकर के तैयार हैं। एक समय में हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थी, हमारे पास फाइट करने के लिए असॉल्ट राइफल्स की कमी आ गई थी। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स सिर्फ बना नहीं रहा है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अब भारत बुलेट प्रूफ जैकेट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है, ये भी हमको समझना चाहिए।
प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब संजय सेठ ने उजागर किया कि भारत अब दुनिया भर के 92 मुल्कों को हथियारों और दिफाई साजो सामान की बरामदात कर रहा है और ये नया भारत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज कंबोडिया के शहरी हवाबाजी से मुतालिक सरकारी सेक्रेटरिएट ने थाईलैंड के साथ लड़ाई वाले जोन्स में सभी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। एसएससीए के सरकारी सेक्रेटरी ने कहा है कि लड़ाई वाले जोन से परवाज करने से गुरेज करने की खातिर सभी एयरलाइंस को मुत्तला कर दिया गया है। इस दौरान थाईलैंड कंबोडिया सरहद से मुत्तसिल मुख्तलिफ इलाकों में झड़पें जारी रहने की खबर है। कंबोडिया की अफवाज ने भारी हथियारों, तोपखाने और रॉकेट निजाम का इस्तेमाल करते हुए बमबारी जारी रखी। थाईलैंड की अफवाज ने इसके मुताबिक जवाबी कार्रवाई की है और मकामी शहरियों को एडवाइजरी जारी की है कि वो झड़पों वाले इलाकों में न जाएं। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कंबोडिया की जानिब से फौरी जंगबंदी की बात कहे जाने के बावजूद लड़ाई जारी है। दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर बैनुल अक्वामी कवानीन की खिलाफवर्जी के इल्जाम लगाए हैं। تھائی لینڈ کی صحت عامہ کی وزارت کے نائب ترجمان کے مطابق جمعرات کو تھائی لینڈ کمبوڈیا سرحد کے نزدیک فوجی تصادم میں تھائی لینڈ کے 14 شہری ہلاک اور دیگر 46 زخمی ہو گئے تھے۔ آج کمبوڈیا کے دفاعی ترجمان نے کہا ہے کہ کمبوڈیا میں سرحد پر جھڑپوں میں کم از کم 13 افراد ہلاک اور دیگر 71 زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران آج کمبوڈیا میں بھارتی سفارت خانے نے بھارتی شہریوں کو سرحدی علاقوں کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں بھارتی شہری فنوم پین میں بھارتی سفارت خانے سے +855 92 88 1676 یا ای میل cons.phnompen@meae.gov.in پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے آج کہا ہے کہ بھارت تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نئی دلی کے دونوں ملکوں کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں اور بھارت امید کرتا ہے کہ دونوں ممالک دشمنی کو کم کرنے اور اسے مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ وزارت نے مزید کہا کہ خطے میں سفر کرنے والے بھارتی افراد کسی بھی طرح کی مدد کے لیے اپنے اپنے سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماہر سیاستدان اور سابق مرکزی وزیر شری پسپتی اشوک گجپتی راجو نے آج پنجی میں واقع راج بھون میں ایک تقریب کے دوران گوا کے نئے گورنر کے طور پر حلف لیا۔ بامبے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آلوک آرادھے نے انہیں عہدے کا حلف دلایا۔ جناب گجپتی راجو نے پی ایس سری دھرن پلئی کی جگہ گوا کے گورنر کا عہدہ سنبھالا ہے، جنہوں نے اس مہینے کے شروع میں اپنی میعاد مکمل کی تھی۔ حلف برداری کی تقریب راج بھون کے دربار ہال میں ہوئی اور ریاست کے اعلی حکام اور معزز شخصیات نے اس میں شرکت کی۔ کامرس کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج بتایا کہ عمان کے ساتھ بھارت کا آزاد تجارتی سمجھوتا تکمیل کے قریب ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بتایا کہ امریکہ اور یورپی یونین کے ساتھ آزاد تجارتی سمجھوتوں میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، جبکہ نیوزی لینڈ، چلی اور پیرو کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ان تجارتی سمجھوتوں میں ٹیکنالوجیکل شراکت داریوں کی تلاش اور ایس ٹی ای ایم میں بھارت کی طاقت کے استعمال کے امکانات ہیں۔ جناب گوئل نے مزید کہا کہ بھارت کی اشیاء اور خدمات کی کوالٹی بہتر اور قیمت مقابلہ جاتی ہے جو ان سمجھوتوں کو ممکن بناتے ہیں۔
The free trade agreement between India and UK, the comprehensive economic trade agreement, clearly reflects the growing relevance and importance of India at the world stage. And it also shows that more and more countries, particularly the developed world, is today appreciating that India is the future, the business opportunities with India are the best, the goods and services that India provides to the world have high quality and cost competitiveness.
بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی راجستھان اور گجرات میں کل نہایت ہی تیز بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ وسطی بھارت اور مغربی ساحل اور آس پاس کے گھاٹ والے علاقوں میں اگلے 3 دنوں میں مانسون کی صورتحال بنی رہے گی۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اتراکھنڈ، مشرقی مدھیہ پردیش، مغربی بنگال کے ہمالیائی علاقے، سکم، اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ میں کل شدید سے بہت شدید بارش کی توقع ہے۔ شطرنج میں فیڈے خواتین عالمی کپ 2025 میں کنیرو ہمپی اور دوسری بھارتی کھلاڑی دیویا دیشمکھ کے درمیان فائنل مقابلہ شام ڈرا پر ختم ہوا۔ یہ مقابلہ جارجیا کے بٹومی شہر میں ہوا۔ فائنل کا دوسرا گیم کل کھیلا جائے گا۔ کرکٹ میں مینچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ میں اینڈرسن تندولکر ٹرافی کے تحت چوتھے ٹیسٹ میچ کے آج چوتھے دن اپنی دوسری اننگز میں بھارت نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 2 وکٹ پر 112 رن بنا لیے تھے۔ اس سے قبل انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلے اننگز میں 669 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی اور اسے 311 رن کی سبقت حاصل ہوئی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مالدیپ کے اعلی رہنماؤں سے ملاقات کی اور صلاحیت سازی اور ترقی میں مدد کا یقین دلایا۔ انہوں نے مالے میں مالدیپ کے یوم آزادی کی تقریبات میں مہمان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے تمل ناڈو کے ٹوٹیکورین میں 4,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ شطرنج میں جارجیا کے بٹومی میں فیڈے خواتین عالمی کپ 2025 میں کنیرو ہمپی اور ان کی ساتھی ہم وطن کھلاڑی دیویا دیشمکھ کے درمیان خطابی مقابلہ جاری ہے۔ اور کرکٹ میں مینچسٹر میں چوتھے ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن انگلینڈ بھارت پر 311 رن کی سبقت کے ساتھ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔